आपको पता है कि कल मैं एक वीडियो देख रही थी कि हमारी आंख के रास्ते, एक सोच जो आंख देखती है वो जिस्म में अंदर जाने के बाद क्या कुछ होता है, यानी ये डोर टू हार्ट है। आपकी आंखें, मेरी आंखें, ये दिल के दरवाजे हैं। आंख जो देखती है दिल वो सोचता है। और लाखों मिलियन कितनी लंबे चौड़े फिगर्स हैं, कितने पिक्सल की हमारी आंखों में कैमरे लगे हुए हैं। और क्या हम इसको गंदगी से करेंगे? आप में से किसी को खुद भी अगर ऐसी कोई इंक्लाइनेशन होती है, फौरन अपना इलाज कीजिए। फारिग ना रहें, अकेले ना रहें, शादी नहीं हुई तो शादी करवा दीजिए ऐसे इंसान की, और उसकी नज़रों को पाक करने के लिए उसको पूरे तरीके से किसी अच्छी कंपनी के साथ जोड़कर उसको इन चीज़ों की अवेयरनेस दीजिए। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को ऐसे फितनों से बचा ले। आगे है कौम शुएब का अंजाम, आयत 78 से 79 में। व इन कान असहाबुल ऐकति लज़ालिमीन, यहाँ कौम शुएब का एक और नाम आपको दिख रहा है, असहाबुल ऐका। ऐका कहते हैं बन को, जंगल को, यानी ये कौम जंगल में जो रहती थी। तो काफ अंतकमना मिनहुम, हमने उनसे इंतकाम लिया, और वो तो बड़ी खुली रोड पे थे, यानी शारे फैसल, जिस तरह आपके लबी इमाम मुबीन, यानी मेन रोड पे थे। कौम शुएब का पीछे हमने किस्सा डिटेल से पढ़ा, यहाँ सिर्फ हिंट्स हैं। आप देख रहे हैं कि सूरह हिजर में अम्बिया के किस्से डिटेल से नहीं हैं, बस ऐसे जैसे आप एल्बम का एक एक सफ़ा पलटते जाएं और वो आपको समझ आ जाए। क्या पता चला कि इस कौम ने माली खयानतें की, पैसे की खुर्दबुर्द की, डंडी मारी, अल्लाह ने उनको पकड़ा और इबरत बना दिया। फिर कौम समूद की तबाही, और इधर आपको ऑर्डरली भी नहीं दिख रहा, जो एक कह सकते हैं ना टाइम जोन से पहले कौन सी उम्मत आई, बाद में कौन, सूरह हिजर में वो तरतीब नहीं है। कौम समूद की तबाही 80 से 84 में क्या है, वलकद कज़्ज़ब असहाबुल हिजरिल मुरसलीन, अलबत्ता तहकीक जुटलाया असहाब हिजर ने रसूलों को। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि उन्हीं कौमों का जहाँ पीछे जिक्र आया था वहाँ और नाम थे, इधर और है। असहाबुल हिजर कौन सी कौम है, कौम समूद, और इसी नाम पर यह सूरत भी है कि हमने उनको अपनी निशानियाँ दी थी लेकिन वो तो उससे मुंह फेरने वाले थे। और वो पहाड़ों के अंदर तराशते थे घरों को अमन में रहते हुए, और बस पकड़ लिया हमने उनको सुबह होते ही एक चिंगार से। फमा अगनान हो माँ खानु यकसिबून, फिर उनके काम ही ना आई वो चीज़ें जो उन्होंने कमाई थी। क्या पता चला कि अपने दौर की सुपर पावर्स थी, सुपर सोल पावर्स थी, अपने ऊपर बड़ा मान करती थी और इनकी लंबी उम्र थी, घर बड़े अच्छे अच्छे बनाते थे, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई तो सब मलिया मेट हो गए। और इसके बाद अब सूरत का एंड शुरू हो रहा है, अल्लाह के नबी से खिताब है, आयत 85 से 88 में, कि वमा खलकना समावाती वल अर्थ, हमने नहीं बनाया आसमानों और ज़मीन को किस तरह मगर हक के साथ, उसके दरमियान की चीज़ों को भी, और बेशक क़यामत आने वाली है। आप क्या कीजिए, फसफ़ख़े सफ़ल जमील, आप दरगुजर कीजिए, खूबसूरत तरीके से दरगुजर करना। जैसे कि पीछे आयतों से भी आपको अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह के नबी पर बहुत इतराज़ात कर रहे थे, कभी आपको मजनू कहते, कभी दीवाना कहते, कभी मुतालबे मांगते। अल्लाह कहते इनको पर्पज़ ऑफ लाइफ तो बताओ, आसमान और ज़मीन तो एक बड़े मकसद के साथ है, और एक दिन क़यामत आएगी सब खत्म होगा, आप इनको ज़्यादा ना टच करें, ये जो करें इनको करने दें, और जो दिल दुखता है, जो तकलीफ़ होती है इनकी बातों को देख के, तो फिक्र ना करें, आपका रब तो खल्लाकुल अलीम है। और आप क्या करें, वलकद आतैना कस्सब मिनल मसानी, इसको नोट कीजिए, 87 आयत है हिजर, ये आयत आपके मेरे लिए सूरत फातिहा, जिससे हमें इतनी मोहब्बत है, उसका एक नाम है इसमें। और बेशक हमने आपको 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयतें दे दी, और साथ ही वल कुरान अल अज़ीम। उलमा कहते हैं कि यहाँ सबम मिनल मसानी से मुराद सूरत फातिहा, क्योंकि रिपीटेडली पढ़ी जाने वाली 7 आयतें, दिन में कितनी दफ़ा आप भी पढ़ते हैं आपको अंदाज़ा है। और वो अथफ का है, इससे कहते हैं कि कुरान अलग चीज़ है, सूरत फातिहा अलग चीज़ है, ये एक छोटा सा बुकलेट था, दोनों को अल्लाह ने जोड़ दिया। जैसे पीछे हम पढ़ते हैं ना, फ़ी सुहुफ़ इब्राहिम अव मूसा, पिछले अम्बिया को छोटे छोटे बुकलेट दिए गए थे, तो अल्लाह के नबी को क्या मिला, एक तो कुरान मिला और एक सूरत फातिहा मिली। मुराद यह कि सूरत फातिहा बड़ी अहम है। करना क्या है इसको थामना, और क्या नहीं करना, ला तमुद्दन नई नई, और अपनी आंखों को लंबा ना कीजिए उस चीज़ की तरफ जो हमने दूसरों को फ़ायदा दिया। ये बड़ा प्यारा नुक्ता है आपके मेरे लिए, और स्पेशली वो लोग जिनको कुरान मिल जाए ना, फिर उनकी नज़रों में दुनिया की कोई चीज़ नहीं जचती, किसी के घर को देखकर, माल को देखकर, औलाद को देखकर, गाड़ियाँ, सेलफोन, कपड़े, जूते देखकर क्या कहा, ला तमुद्दन आइनैक, खुश रहने का राज है, अपनी आंखों को लंबा ना करो। ये जो मद है ना, मद्दे असली, मद्दे फुला, लंबा खींचते हैं ना उस लफ्ज़ को, ये वही लफ्ज़ है। यानी अपनी आंखें लंबी ना करो। आंखें लंबी कैसे होती है? आप एक चीज़ देखे और देखते ही चले गए, इस तरह की कैफियत। तो क्या पता चला कि दुनियावी चीज़ों से बेहतर और अजीम चीज़ों की तरफ देखना है, और दुनियावी चीज़ों की जीनत पर हैरान नहीं होना, दुनियावी जीनत की बजाय बाकी रहने वाले आमाल पे तवज्जो देनी है, और आखिरत में फ़ायदा देने वाले कामों में मशगूल हो जाना है। ये पहला आपको नुक्ता इससे मिल गया। मुराद ये है कि जब अल्लाह ने आपको अपनी किताब के लिए चुन लिया, अल्लाह ने मुसलमान बना दिया, कुरान दे दिया, सूरह फातिहा जैसी प्यारी आयतें दे दी, तो आप दुनिया की चीज़ों से इम्प्रेस ना हो। आज हमारे बच्चे, ख़ास तौर पे जिनको हमने बचपन से ही ब्रांड कॉन्शियस किया, जिनको हमने वेस्टर्न स्टाइल बड़ा खूबसूरत करके दिखाया, आज उनमें मादा परस्तियत बहुत है। वो ब्रांड के बगैर चीज़ नहीं पहनते। एक चीज़ 1,000 की और वही चीज़ 6,000 की, 10 की ले लेंगे। क्यों? कि वो ब्रांड है, ब्रांडेड चीज़ें, या गाड़ियाँ, या कुछ और। देखिए, ये चीज़ें मिट्टी है। आप एक स्लोगन के साथ किसी चीज़ को तो नहीं बना सकते। आपको अच्छा लगता है आप ले लीजिए, आपको लगता है ये ड्यूरेबल है आप ले लीजिए, आपको सॉफ्ट लगता है आप ले लीजिए, लेकिन इसको ब्रांड कॉन्शियस होकर इज्जत का सिंबल बनाना, इससे रोका जा रहा है इधर। फिर अगला जो बड़ा प्यारा हुक्म इसमें आया था, वक्फिस जनाहकलिल मोमिनीन, लोगों के लिए, मोमिनों के लिए अपने आप को झुकाइए। अमूमन जब दुनिया की दौलत और चीज़ों में बंदा पड़ता है तो बंदे को बंदा नहीं समझता। पैसे वाले लोगों के साथ तो बड़ा अच्छा, लेकिन जो बेचारे आम लोग हैं उनके साथ अच्छा नहीं। ख़ास तौर पर चूँकि यहाँ नबी सल्लम को कहा जा रहा है ना, वाक़िफ़ जना हका, वाहिद का ज़मीर है, तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लम को कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और आपके नाते क़यामत तक आने वाले लीडर्स को, जो बड़े होते हैं किसी भी जगह के, उनको क्या हुक्म है। पहली बात है कि अपने पैरोकारों को अपने करीब कीजिए, यानी आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके साथ लगे रहते हैं, जो आपकी टीम के लोग हैं, उनको लेट गो ना कीजिए। फिर लोगों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई आसान होनी चाहिए। एक आम बद्दू भी आपके पास आ जाता था, एक औरत रास्ता रोककर आपसे बातें करती है, क्यों? क्योंकि आपके पास हटो बचो और दरबान और बादशाहों वाला प्रोटोकॉल नहीं था। तो क्या पता चला कि आज खास तौर पर अगर आप दीन के नाम पे मारूफ है ना, तो अपने आप को जितने लो प्रोफाइल पे रखेंगे उतना बेहतर है। लोगों की तरबियत कर दीजिए, तो क्या पता चला कि लोगों के लिए आपका नरम पहलू होना चाहिए। आप लोगों की हाजात पूरी करें, उनकी बात सुनिए, और कमज़ोरों का ख्याल रखिए। आज मजहबी रहनुमाओं के लिए ख़ास तौर पे इसमें गाइडलाइन है। आप देखिए कि जो लोग प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, मसलन किसी लॉयर के पास, वो तो उनको हाथों हाथ लेते हैं, इसलिए ना कि चंद हज़ार रुपये लेने हैं उनसे। आप डॉक्टर्स पे जाते हैं, फीस दे के जाते हैं, डॉक्टर कितने प्यार से बात करते हैं। क्या जब कोई दीन के नाम पर आपसे बात करे तो आपको बदतमीज़ हो जाना चाहिए? ठीक है, लोग हद से बढ़ भी जाते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, और उनकी तरबियत करते हैं, अगली दफ़ा वो कभी भी नहीं करेंगे। और मैं आपको फिर एक माँ होने के नाते कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ भी यही 5 असूल रखिए। बी अप्रोचेबल। एक अच्छा लीडर वही होता है कि जिससे लोग बात करने में कंफर्ट फील करें, और सहाबा कराम नबी सल्लम के साथ बिल्कुल ऐसा महसूस करते थे। इसके बावजूद देखिए कि सारी ज़िंदगी में शायद 10-12 सवाल पूछे। हमारा मसला ये भी ना कि हमें इजाज़त मिल जाए तो हम तो हदों से पार हों, क्योंकि हमारी कौम की तरबियत नहीं हुई हुई। आगे आए 89 से 93 में दीन के टुकड़ों की बात है, यानी फ़िरका वारियत। वो लोग जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उनसे अल्लाह के नबी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। फरमाया, ऐसे लोगों को पीछे कर दो। कुल इन्नी अनन नज़ीर मुबीन, आप कह दीजिए कि मैं तो खुल्लम खुल्ला एक बात से आगाह करने वाला हूँ। कमान जलना अलल मुख्तसिमीन, जैसे हमने नाजिल किया था टुकड़े टुकड़े करने वालों पे, अल्लज़ीन जालुल कुरान इदीन, जिन्होंने कुरान के टुकड़े कर दिए। अब ये कुरान के टुकड़े क्या है? ये वही बात है कि जिसको अगर शुरू में ले लीजिए तो अफतु में नूना भी बात, दिल किताब भी बात, तकफुर होना भी बात है। अपनी मर्ज़ी के हिस्से को ले लिया, अपनी मर्ज़ी को छोड़ दिया। दूसरे इसके अंदाज़ के कि अपने अफकार, अपने नज़रियात, अपनी फ़िक्र की बातों को कुरान से साबित करना, और इसी तरह से सबसे बड़ी बात कि इसी बुनियाद पे तो फ़िरके बने, यानी ये आयत फ़िरका परस्ती के रद्द में आप नोट कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो कुरान ही को बुनियाद बनाकर या हदीस को बुनियाद बनाकर दीन को टुकड़े टुकड़े करते हैं, फवरब्बि कलनसअलन्नहुम अजमाइन, बस कसम है तेरे रब की अलबत्ता ज़रूर हम उन सबसे पूछेंगे। शिद्दत दर शिद्दत है। किस बात पे? अम्मा कानू या मालून, जो ये अमल करते हैं। आपके मेरे लिए इसमें क्या है? अपने आप को मुसलमान कहिए। आप देखिए कि कोई फ़िरका दूसरे फ़िरके का नाम कबूल नहीं करेगा, लेकिन लफ्ज़ मुस्लिम सब कबूल करेंगे। आज के दौर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत क्या है? सारे फ़िरकों को एक ब्लेंडर में डालिए और नीचे से मशीन चला दें, उसकी एक स्मूदी बनाएं और कुरान सुन्नत के नाम को सब अपने लिए चूज़ कर लें। अदरवाइज़ इस वक्त मुसलमानों के टूटने और कमज़ोर होने की एक बहुत बड़ी वजह यह कि दीन के नाम पर ज़्यादा ज़ोर व शोर और असबाब और मेहनतें लोगों को अपने एक फ़िरके की सच्चाइयाँ, अपने गिरोह, अपने मसलक की सच्ची हकीकत बताने में लग रहा है, और इसके बरक्स लोग बुराइयाँ कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। इसके बाद आगे ये आयते हैं 94 से 99, बड़ी अहम आयते हैं। अलल एलान तबलीग का हुक्म जो आपको मक्का में हुआ था वो इस आयत के थ्रू हुआ था। शुरू में तो ज़रा ढका छुपा मामला था, नया नया दीन था, अभी रिएक्शन भी इतना नहीं था, लेकिन वन ऑन वन बेस पे बात हुई। और इससे पता चलता है कि जब कोई तहरीक या कोई ऑर्गेनाइजेशन नई नई किसी जगह पे मुतारिफ हो, कोई एक इंसान है वो बड़ी अच्छी बात करता है लेकिन अभी उस शहर में वो नया है, तो फिर फ्लायर से और LCD से और LED से नहीं, पर्सन टू पर्सन, वर्ड बाय माउथ जिसको आप कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने जो 3 साल शुरू के, आपके नबूवत मिलने से शुरू के 3 साल जो स्ट्रेटजी इख्तियार की थी उसका तस्करा, आप अपनी फैमिली के लोगों से बात करें, मैं अपनी फैमिली से करूं, और इसी की बेस पे फिर अल्लाह के नबी ने अपने ख़ानदान वालों को बुलाया था। वो आगे आयत आएगी, वंजिर अशीरत अकल अकरबीन, लेकिन इसमें आपके मेरे लिए एक हुक्म आ गया कि आप दीन की तबलीग को अब कीजिए। हालांकि इस काम में मुखालफत बहुत थी लेकिन करना तो पड़ेगा। और फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आयत 98 के शुरू से क्या पता चला? आप अपने रब की तस्बीह कीजिए और सजदा करने वालों में से हो जाए। लोगों की बातों से दिल तो घुटता है, अल्लाह कहते हैं सीने की तंगी दूर करने का इलाज है ये। आज भी अगर आपकी फैमिली में दीन कम है और आपको अल्लाह ज़्यादा दे रहा है, या नया नया दीन है, अब बातें ना तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या सजदे में जाके रो धो लें। जब लोग आपको दीन के नाम पे सताएं तो आप अल्लाह के सामने जाके रो धो लें, तो क्या पता चला कि तस्बीहात जो होती है ना, ये परेशानी, डर और खौफ को दूर करने का ज़रिया बनती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत से अल्लाह की तस्बीह करने का हमें बयान मिलता है। जैसे एक रिवायत है रबिया बिन काब से, सुनन नसाई में 1619 नंबर है, कहते हैं कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के करीब ही मैं सोता था। जब आप रात को तहज्जुद के लिए उठते तो मैं सुनता था कि आप देर तक सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी पाक है अल्लाह जो जहानों का रब है, पढ़ते रहते पढ़ते रहते, फिर देर तक सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहते, यानी अल्लाह ताला तमाम ऐबों और नकायस से पाक है, ये पढ़ते। तो क्या पता चला कि बंदा मोमिन की डिक्शनरी में अल्लाह का नाम बहुत होना चाहिए। जितनी आप अल्लाह की तारीफ़ें करेंगे उतना अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डालेगा। तो बड़े खूबसूरत पैगाम पे सूरत हिजर पूरी होती है, और ये सूरत आपको मुझे जो मैसेज देकर जा रही है वो क्या है कि जब दीन के नाम पे आपकी मुखालफत हो, जब दीन की वजह से लोग आपको कंडेम करें, तो अल्लाह के साथ सजदों का और तस्बीहात का ताल्लुक बढ़ाते जाएं, इंसानों से दूर हो जाएं। देखिए तस्बीह करेंगे ना तो जवाब नहीं देंगे लोगों को, गलत बात का जवाब नहीं देंगे तो बात खुद ही बदल जाएगी। सजदे में जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? कोई दिखेगा ही नहीं। सजदा वो कैफियत है जिसमें कोई आपको दिखता ही नहीं, यानी आपकी नज़रें अल्लाह ताला पे लग जाएंगी इंशाल्लाह। इसके बाद अगली सूरत है नहल, बड़ी खूबसूरत सूरत है, बल्कि एक कोड वर्ड दे दूँ ना तो टीम वर्क। कायनात की सारी प्रोडक्टिविटी, अफादियत, फ़ायदामंदी, नफ़ामंदी और जो मर्ज़ी नाम रख लीजिए, बेनिफिट्स और प्रोग्रेस, जिस असूल पे है ना वो टीम वर्क है। और सूरत नाहल में अब इसकी आप बहुत सारी मिसालें देखेंगे कि छोटी छोटी मखलूकात भी मिलकर काम करती हैं तो कितने बड़े बड़े असरात उनके होते हैं। ये पूरी सूरत हम इस बारे में पढ़ेंगे, इसकी 128 आयात है। पहली दो आयात मुशरिकीन के लिए दो टोक ऐलान है, अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू, आ गया हुक्म अल्लाह का पर जल्दी ना मचाओ, पाक है वो और बुलंद है वो, उससे जो वो शिर्क करते हैं। वो नाजिल करता है फरिश्तों को रूह के साथ अपने हुक्म से जिस पर चाहे अपने बंदों में से, और डराओ इनको, बेशक नहीं है कोई ला इलाहा इल्ला अना मगर मैं। देखिए हम क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अल्लाह ताला अपने बारे में क्या कहते हैं, नहीं है कोई ला मगर मैं। फत्तकून। अब अगर कोई कह दी कुरान का हिस्सा ही है ना, मैं ये आयत शुरू करूँ और मैं बस इसमें से ये टुकड़ा पढ़ूँ, ला इलाहा इल्ला अना, ला इलाहा इल्ला अना, क्या बना? ये वही जुमला है जो फिरौन ने बोला था ना, रब्बुकुम लाला। तो कुरान का तर्जमा कितना ज़रूरी है। लोगों ने इसी तरह से टुकड़े डोल के टोटे लेकर छोटे छोटे तो वज़ाइफ बनाए हुए हैं। तो क्या पता चला, अल्लाह के नबी को बता दिया कि अब डरने की दबने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको साफ बता दो कि आमद आने वाली है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मेरे पास वही को भेजा है और मेरा पैगाम यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर इसके बाद आयत 3 से 11 में अल्लाह ताला की तख्लीक के अजीम शाहकारों का तذکرہ है, खलक़त समावाति वल अर्द बिल हक़ से लेकर लिकौम यतफक्करून तक। क्या पता चला, कुरान तो है ही, कायनात भी अल्लाह का तारुफ है। आपको जो मोहब्बत कुरान पाक पढ़कर अल्लाह ताला से महसूस होती है ना, वो कुरान के बाद कायनात को देखकर भी होनी चाहिए। इसमें भी अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का तذکرہ कर दिया कि आसमान और ज़मीन उसने हक के साथ पैदा किए, मुरादे के बामकसद हैं, मकसद के साथ पैदा किए, और वो बुलंद है उससे जो वो शिर्क करते हैं, उसने पैदा किया इंसान को नुतफे से, फिर वो झगड़ालू हो जाता है। अब देखिए बच्चा पैदा होते ही लड़ना शुरू हो जाता है, कभी खुद से लड़ता है, कभी माँ से लड़ता है, दूध नहीं पीता, ज़िद में आ गया, चिढ़ गया, ज़रा सा बड़ा हुआ तो भाई बहनों से लड़ा, और होते होते फिर वो झगड़े उसके ज़िंदगी भर पे रहते हैं। फिर अल्लाह ने कुछ चौपायों की बात की कि और चौपाए हैं यानी कैटल्स हैं, मवेशी हैं, जो हमने तुम्हारे लिए पैदा किए। क्या पता चला कि जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए, सारा जहाँ तेरे लिए, तू अल्लाह के लिए। ये पूरी कायनात आपके मेरे लिए अल्लाह ताला का एक खूबसूरत तोहफा है। आयत 12 से 16 में वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार से लेकर यख्तदून तक बात करके आसमानों की और समंदरों के अंदर के सी फूड की, और वो तस्तखरी जो मिन्हु हिलया, ये जो खूबसूरत मोती हैं, जो लूलू वल मिरजान जो हम पहनते हैं जेवरात में, और कश्तियों की बातें करके और पहाड़ों की बातें करके, सूरज चांद सितारे हवाएं मुख्तलिफ रंगों की जो चीज़ें करके कहा, ये सब अल्लाह ने तुम्हें बना के दिया।